श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस 31 अगस्त के 2016 के स्वामी श्रद्धानंद अस्पताल के इस जन्माष्टमी महोत्सव में आप सब लोगों का स्वागत है। बोलिए हरे कृष्णा। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग अभी जन्माष्टमी के एक हफ्ते बाद में क्यों मना रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम सब लोग हमारे मूल मंदिर में जाते हैं जन्माष्टमी को मनाने के लिए। उसके बाद में जहाँ जहाँ भी हमारे सेंटर्स हैं वो सब जगह हम जन्माष्टमी मनाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रमुख मंदिरों में शायद भीड़ की वजह से और समय के अभाव की वजह से सब लोग नहीं जा पाते हैं। सब लोगों को भगवान के जन्माष्टमी को मनाने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए जगह जगह जहाँ जहाँ हमारे केंद्र हैं वहाँ पर हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। क्योंकि अगर मंदिर में आपको लेके जाएंगे तो आपको अभिषेक करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अभिषेक करने का मौका मिलेगा। परम भगवान को अभिषेक बड़ा पसंद है। हाँ, हम लोग सोचेंगे कि हमारे ऊपर दूध दही मधु और फलों का रस डाला जा रहा है तो हमको कैसा लगेगा आपको। हाँ, पीने को अच्छा लगेगा लेकिन बदन पे थोड़ा मुश्किल, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान जब हम इन वस्तुओं को उनको अर्पण करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान का जन्म हुआ था तो यशोदा मैया ने भी उनको ऐसे अभिषेक कराया था। और बाय द वे आपको वो सुनकर खुशी होगी कि रोज भगवान का पंचामृत से यशोदा मैया अभिषेक किया करती थी और भगवान को बड़ा उसमें आनंद आता है। और जो लोग बड़े प्रेम से उनको ये सब चीज़ें अर्पण करते हैं उनको बड़ी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सब लोगों के लाभ के लिए जन्माष्टमी महोत्सव बार बार कई दिनों तक कई जगह पर चलते रहता है। तो ये श्री कृष्ण भगवान का जन्म अभिषेक जन्माष्टमी उत्सव मनाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हमें बार बार याद दिलाने के लिए कि भगवान हमारे लिए आ रहे हैं। भगवान अपने धाम में तो बहुत खुश हैं, उनके सारे भक्त लोग उनकी सेवा करते रहते हैं, लेकिन वो हम सब लोग उनको छोड़कर यहाँ पर आए हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, उनको भूल कर यहाँ पर भोग देना चाहते और फिर दर दर भटकते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में, बीमारी बुढ़ापे के चक्र में, दुखों के कष्टों के चक्र में यहाँ पर तड़पते रहते हैं और बार बार आते रहते हैं। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, कोई नहीं परमानेंट, सब लोग आते जाते रहते हैं, सब लोग दुख भोगते रहते हैं। तो इनका और हमारा सबका दुख देखकर भगवान को बड़ी दया आती है और भगवान फिर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर जो वहाँ पर करते हैं उनके धाम में वो दोबारा यहाँ पर करते हैं। वहाँ पर जो चल रहा लीला उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर प्रकट करते हैं ताकि हम आपको सब लोगों को उनको देखकर लीलाओं को याद आ जाए। अरे हम लोग कहाँ आ गए, इतने बड़े महल में थे तो अभी रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश करने आ गए, ऐसा एक भाव है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमने क्या छोड़ा है क्या पाने के लिए। एक तुच्छ वस्तु पाने के लिए भगवत धाम को छोड़ के आए और भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत संतुष्ट है वहां पर, फिर भी वो आते हैं। हम सबके ऊपर दया है उनको, बहुत बहुत करुणा है, प्रेम है, इसलिए वो आते हैं और जन्म लेते हैं। तो ये जन्म जो उनका है हमारे लिए बड़ी कृपा है उनकी, इसलिए उनको जन्म को मनाना समझना बहुत जरूरी है। और उनका जो जन्म है वो हमारे से बहुत अलग है, हम जिस प्रकार से दुनिया में आते हैं जन्म लेते हुए, वो एक प्रकार से आते हैं, आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान जन्म लेते नहीं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो हमारे जैसे रोते हुए छोटे से बालक के रूप में नहीं आते, पूरे युवक के रूप में, अलंकार के साथ, घुंघराले बालों के साथ, धोती कुर्ता पहनकर, वैदुर्य मणि का मुकुट, कौस्तुभ मणि छाती पर, श्रीवत्स मणि, ऐसे सारे अलंकारों के साथ चमकते हुए, बिजली की तरह चमकते हुए आते हो। कंस का कारागृह जो था, काल कोठड़ी, प्रकाश से प्रकाशमान हो गए, दिव्य प्रकाश से, जैसे हजारों विद्युल्लता जो है चमक रही है साथ में। तो ये भगवान का जो दिव्यता है वो समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम उसको मनाते हैं। भामी हाँ, बाकी सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि एक दिन मौत के साथ और नजदीक आ गया है ना। हमारा जो हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या होता है, वन मोर ईयर टूवर्ड्स डेथ, एक साल और मौत के पास में आ गया। लेकिन हम लोग केक काटकर खुशियां मनाते हैं, कोई सोचता नहीं है कि इसका चिंतन क्या करना चाहिए। लेकिन भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, भगवान तो चिरंतन है, उनको हमारे जैसे मौत नहीं आती है, वो चिरंतन है, हम भी चिरंतन है, लेकिन शरीर धारण करके कुछ समय बाद मरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि शरीर धारण किया ना हम लोग ने यहां पर आकर। तो उस भगवान की लीला हम लोग यहां पर सुनने के लिए और मनाने के लिए आए हैं। और इसमें रहस्य की बात क्या है, क्यों जन्मदिन मनाते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। कि ये भगवान का अगर जन्म का दिव्यता आपके समझ में आया ना, तो इस जन्म के अंत के बाद आपको दोबारा यहां पर नहीं आना पड़ेगा, इसीलिए उसको बनाते बार बार। हम सबको पता नहीं होगा, सब लोगों को सबको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अगर आप इस उत्सव में आए और भगवान का अभिषेक या तो किया या तो देखा या तो सुना उसके बारे में, और आपको अगर समझ में आया कि इनका जन्म जो है हमारा जैसा नहीं है, बूढ़े होने वाले नहीं है, ये बीमार नहीं पड़ने वाले, बीमार पड़ेंगे वो बीमार नहीं पड़ते हैं। कभी देखा है क्या, भगवान को बुखार आया था द्वारका में, डॉक्टर आके दवा दे के गए, कई दिन एडमिट रहे, फिर ठीक डिस्चार्ज हो गए, ऐसा सुना क्या आपने कभी? कभी नहीं सुना है। भगवान की दाढ़ी बहुत सफ़ेद हो गई, वो झुक गए और डंडा लेके चलने लगे, कभी देखा है आपने? ऐसे 125 साल के थे वो, मतलब उनके प्रकट होने के हिसाब से, वो तो कभी जन्म लेकर ऐसा उनकी उम्र नहीं गिनी जाती, लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि जब पृथ्वी पर प्रकट हुए तो महाभारत के युद्ध में 125 साल के थे वो, सब उनसे छोटे थे, एक भीष्मदेव और द्रोणाचार्य छोड़कर। लेकिन भगवान दिख रहे कैसे, 16 साल के युवक जैसे दिख रहे हो, किशोर अवस्था में, सुंदर अवस्था में, मनमोहक अवस्था में, हजारों काम देवों को भी लज्जा आ जाए ऐसा सौंदर्य उनका यौवन का था। और भीष्मदेव लंबी भाड़ी वाले, 170 साल के थे वो उस समय, उनको जन्म मृत्यु और बुढ़ापा लागू था, भगवान उसके परे हैं। तो जब हम लोग हमारे इस भौतिक दुनिया में रहते हुए, हमारी कुछ उम्र है, कुछ जगह पर खड़े हम लोग, अगर हम भगवान का जन्मदिन इस तरह से मनाते हैं और समझते हैं कि भगवान का जन्म दिव्य है, लौकिक नहीं है, पारलौकिक है, अलौकिक है, तो इसी जन्म के अंत में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। त्यक्त्वा देहम, मतलब जब देह छोड़ने का समय आएगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं होगा आपका। और पुनर्जन्म क्यों नहीं होना चाहिए? अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आकर जन्म का कष्ट भोगना, फिर बुढ़ापे का कष्ट भोगना, फिर बीमारी का कष्ट भोगना, फिर मृत्यु का भयंकर कष्ट भोगना, जो किसी को सोचने का भी इच्छा नहीं उसके बारे में, लेकिन सबको जाना है उसके अंदर, वो होगा ना। बार बार मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए बार बार मृत्यु होती है। तो भगवान कहते हैं एक बार मेरे जन्म और मेरी लीलाओं की दिव्यता आप समझ लो, फिर आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा यहाँ पर। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, एक बार यहां से मुक्त होकर मेरे धाम पे आएगा, दोबारा लौटकर यहां पर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ऐसे भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग यहीं पर और खुश होने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं यहां पर खुश नहीं हो सकते आप, खुश होंगे तो मेरे धाम में। जो बच्चा पिताजी का घर छोड़कर स्टेशन पर बोट पॉलिश कर रहा है वो खुश नहीं हो सकता, वो ठोकरें खानी पड़ेगी उसको, घर जाएगा तो खाना पीना रहना आराम से रहेगा, ऐश ऐश के साथ में रहेगा, ऐश्वर्य के साथ में रहेगा, क्योंकि उसका सच्चा सुख जो है उसकी पिता के साथ रहने में है। अकेले दर दर भटकने के लिए नहीं है उसकी जिंदगी। तो ये भगवान हमारे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन हर्षण योग पे, रोहिणी नक्षत्र पे, चंद्रोदय की बेला में, बीच रात के मुहूर्त पर प्रकट हो गए। वो अष्टमी में चंद्रमा कैसी होती है बताइए? अष्टमी को चंद्रमा कैसे होती है? आदि होती है ना, आदि। लेकिन भगवान वसुदेव देवकी के रूप में चंद्रवंश में जन्म ले रहे थे, तो चंद्र को कितनी खुशी हुई, अरे हमारे परम भगवान हमारे वंश में आ रहे हैं तो मैं क्यों आधार हूं, वो भी पूर्ण हो गए। ऐसी अनोखी ये अष्टमी थी जिसमें अष्टमी में भगवान पूर्ण चंद्रमा हो गए, मतलब चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो गए। रात में कभी आकाश, रात में कभी फूल खिलते क्या, हमने देखे कभी? अरे बीच रात में सब जगह फूल खिल गए, फल फूल सब खिल गए, नदी में जल स्वच्छ हो गए, नदी में हजार दल के 100 दल के कमल खिल गए बीच रात में। रात में पंछी गाते क्या? अरे इस रात में सब पंछी उठ गए, मोर नृत्य करने लगे, कोयल सब पंछी अपने अपने आवाज में, भ्रमर भी गुंजन करने लगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, सब जगह आनंद तो छा गया, फल पेड़ सब समृद्ध हो गए, आकाश स्वच्छ हो गए, तारे चमचमाने लगे, आनंद ही आनंद हो गया। यहां तक कि ऋषि मुनि जितने लोग थे वो देवताओं के साथ में, देवताओं के लोगों से देवताओं के विमान में बैठकर भर भर कर फूल की वृष्टि कंस की नगरी में करने लगे, रात भर गोकुल में और मथुरा में। इतना आनंद, क्योंकि देवताओं के राज्य में क्या होता है, फूल खिलते हैं लेकिन मुरझाते नहीं है, हले खिलते हैं तो कितना स्टॉक होगा उनके पास, हमारे पास कैसा है, कुछ खिल गए कुछ मुरझा गए, फेंक दिया हमने उनको निर्माल्य में। देवताओं के राज्य में ऐसा नहीं होता है, इसलिए जब भी खुशी का मौसम होता है तो वो तो आकाश से पृथ्वी पर पुष्प वर्षा करते हैं। इसलिए बार बार विमान खाली करके, बार बार विमान भर के ऋषि मुनि देवताओं के साथ में आकर वर्षाव कर रहे हैं। और जितने देवताओं के अलग अलग लोक हैं, विद्याधर, चारण, किन्नर, यक्ष, किम पुरुष, गंधर्व, ऐसे अनेक गाने बजाने वाले, नृत्य करने वाले अनेक अनेक देवता है, जन्म से ही एक्सपर्ट है वो लोग इस चीजों में। तो सारे गाने बजाने वृद्ध नृत्य करने वाले सब देवता लोग आकाश में जमा हो गए, गीत गाने लगे, वेदों का उच्चारण करने लगे, नृत्य करने लगे, वाद्य बजाने लगे, खुशियों से गले लगाने लगे एक दूसरे को। इतना खुशी का वातावरण केवल भगवान के प्रकट होने से अपने आप प्रकट हो गया। अनेक प्रकार की भावनाएं प्रकट हो गई, लेकिन आज आपको मैं एक भावना का वर्णन करने वाला हूं कि भगवान के आने के बाद में क्या हुआ। भगवान के आने के पहले कंस की नगरी में इतना भय था, कोई भी चौराहे पर, दुकानदार के पास, बाजार में, रास्ता में, इधर उधर कृष्ण और कंस की मृत्यु के बारे में बात करना सबको मना कर दिया था। उस दिन क्या हुआ था जब देवकी की बारात चल रही थी, सबको मना था क्या हुआ उस दिन बोलने का, क्योंकि उस दिन उनके राजा की मृत्यु का ऐलान हुआ था। हे मूर्ख कंस, जिस बहन का रथ खींच रहे हो उसके 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारा अंत होगा। हा 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 हा, सबने सुना था कि हमारे कंस का मृत्यु का घोषणा की गई, और तब से इतना महाबलशाली, इतना दिग्विजय, इतना शक्तिशाली कंस जो है वो भयभीत था। सबको ऑर्डर देकर रखा था, सब विष्णु का यहां पर यज्ञ वगैरह सब बंद, श्लोकों का उच्चारण बंद, कोई यज्ञ नहीं करेगा, मंत्र उच्चारण नहीं करेगा, कोई दान धर्म नहीं करेगा, कोई धर्म का कार्य नहीं करेगा। तो सारे जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे वो सब यज्ञ वगैरह बंद, यज्ञशाला बंद, मंत्रोच्चारण मन में, सब जगह भय भय छाया हुआ था। कई महीनों तक, कई साल तक वहां पर कोई यज्ञ वज्ञ नहीं हुआ था। तो रात को जब भगवान यहां पर जेल में प्रकट हो गए, उधर किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, खुशियां बरस रही वातावरण में, ऐसी खुशी की लहरें कि सब ब्राह्मणों के और ऋषियों के हृदय में जो भय था वो अचानक नष्ट हो गया। विशेष बात है ये। और बिना डर के अपने यज्ञशाला में गए, बीच रात में यज्ञ करने लगे। बोलो हम लोग कैसे मुहूर्त देखते हैं ना, दिन में करते हैं, बीच रात में कोई यज्ञ होता है क्या? नहीं होता है। भगवान के जन्म के समय सारे भयभीत जो पहले थे भय मुक्त होकर अपनी अपनी यज्ञशाला में बड़े प्रेम से, आनंद से, उल्लास से यज्ञ करने लगे। और यहां पर कैसे वसुदेव और देवकी भी भयभीत थे, अरे बाप रे, छह बच्चों का तो वध कर चुका वो, सातवां बालक पता नहीं कहां चला गया। सातवीं बार जब गर्भवती हुई तो महामाया के प्रभाव से उस गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया गया। बोलिए सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान के अवतरण की लीला हो रही है, सब लोग ध्यान से सुनिए, हाँ सोने का समय नहीं है। तो बलराम जी का अनंत शेष का जो गर्भ था वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। सात हो गए ना, अभी आठवें बार जब गर्भवती हुई तो सब देवताओं ने आके प्रणाम किया, उनको स्तुति किया, भगवान का प्रदक्षिणा किया अदृश्य रूप में जब, लेकिन देवकी को नजर आ रहे थे वो। सारे देवता लोग आकर कंस की कैदशाला में, जेल में प्रदक्षिणा कर रहे हैं देवकी का, इतना प्रकाश आ रहा है उसके शरीर से भगवान के अंदर होने की वजह से। लेकिन जब भगवान प्रकट हो गए, 16 श्रृंगार के साथ प्रकट हो गए, मैंने जैसे आपको वर्णन किया, उसी समय वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया और वसुदेव भय मुक्त हो गए। विशेष बात, वापस प्रेम था ना माता पिता के रूप में। फिर भी भगवान को जब देखा कि ये तो भगवान है, मेरे पुत्र के रूप में आए हैं लेकिन ये भगवान है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तुम लोग साधारण लोग नहीं हो, तुम मेरे परम माता परम पिता हो, चिरंतन। सबसे पहले आपने पृष्णी और सुतपा के रूप में मेरा तपस्या किया था 12,000 साल तक, पेड़ से पड़े हुए सूखे पत्ते खाकर, हवा खाली ग्रहण करते हुए, इतना कठोर तपस्या के बाद में मैं प्रकट हुआ विष्णु के रूप में। तो आपने कहा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो मैंने सोचा, मतलब भगवान बोल रहे हैं उनको, मैंने सोचा मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, तो मैं ही पुत्र बन के आता हूं। तो वो पृष्णी गर्भ नाम के पुत्र से पुत्र के रूप में आए। फिर उन्होंने कहा कि मैं दोबारा, जब आप अदिति और कश्यप के रूप में आए, कश्यप मुनि और देवताओं की माता अदिति, तो उनके गर्भ में वामन देव के रूप में आया, वामन बटु भगवान, त्रिविक्रम उपेंद्र। और आज आप वसुदेव देवकी के रूप में यहां पर मेरे सामने प्रकट हो, आप वही हो और मैं भी वही हूं, और आज आपके सामने वासुदेव के रूप में प्रकट हूं मैं। तो उस समय वसुदेव भय मुक्त हो गए। और वहां पर क्या हो रहा है, कंस हर घटना में भयग्रस्त है, महाबलशाली दिग्विजयी है वो, लेकिन फिर भी हर घटना में, हर क्षण में, हर घंटे में, हर दिन में, दिन और रात उसको नींद कोई मुकर्रर नहीं हो रही है। वो अच्छा पानी का ग्लास दे रहा है तो उसको कृष्ण दिखाई पड़े, पानी फेंक दे रहा है वो। उसके महल में हवा आ रही है तो लग रहा है कि कृष्ण वहां पर छुपा हुआ है पर्दे के पीछे, तो बुला रहा है, आजा आजा इधर आजा, कौन है देखो, अरे महाराज कोई नहीं है, खाली हवा आ रही है। आईने में जाके देख रहा है तो उसको लग रहा है, उसको दिखाई पड़ रहा है कि उसका सर ही नहीं है, उसको दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसका चेहरा उसको आईने में दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको बहुत अशुभ माना गया है। इतना भयभीत है वो, उसको हर जगह पर कृष्ण कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, काल के रूप में, मौत के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारे शास्त्र में लिखा है, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम, ऐसे कहा गया है। तो कंस भी कृष्ण भावना भावित है ना, देखो जिस व्यक्ति को जगह जगह पर, डाल डाल पर, पाती पाती पर, कर्ण कर्ण पर कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है वो, कितनी अच्छी बात है वो। तो हमारा लक्ष्य है जीवन का कि हम जहां देखे हमको कृष्ण दिखाई पड़े, अरे उसको तो ऑलरेडी दिखाई पड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा संत है वो, उच्च कोटि का संत होना चाहिए उसको। लेकिन है क्या वो, क्योंकि वो प्रतिकूल भावना से, शत्रु की भावना से उनको देख रहा था हर जगह पर। जो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान को अनुकूल भावना से, प्रेम की भावना से और भक्ति की भावना से याद करना चाहिए, उनको शत्रु मानकर याद नहीं करना चाहिए। कंस उनको शत्रु समझकर याद कर रहा है, मौत बनकर आएगा ये मुझे मारने के लिए, ऐसे रूप में याद कर रहा है। मतलब कैसे, प्रतिकूल, नॉट फेवरेबल, अनफेवरेबल। इसलिए कंस का चिंतन जो है वो तीव्र है, गहरा है, फिर भी अनुकूल नहीं है, इसलिए भगवान की भक्ति उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। और हमारे ग्वाल बाल देखिए आप, अगासुर आ रहा है, अगासुर जिसने बड़ा भयंकर राक्षस था वो, लंबी कहानी है उसकी, वो कैसे अगासुर नाम का अजगर बन गया। वो अजागुर नाम के राक्षस ने सारे इंद्रादि देवता को अपने राज्य से भगा दिया था, पूरा राज्यहीन, ग्रहहीन, स्त्रीहीन कर दिया था उसको, छुपे हुए थे देवता लोग, भयभीत थे, अगासुर के नाम से भयभीत थे। वो अगासुर है ना, कंस के आदेश के अनुसार आया और रास्ता में मुंह खोल के बैठ गया। तो बच्चे लोग क्या बोल रहे, अरे कितना बड़ा हाईवे है, कितनी बड़ी गुफा है, कितना सुंदर सीन है, चलो चलते हैं। कुछ बोल रहे पता नहीं क्या है, कुछ बोल रहे संकट भी हो सकता है। बाद में सब कुछ डिस्कशन हो गया यहां वहां का उल्टा सीधा, और कंक्लूजन क्या निकला, चलो चलते हैं, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण है ना, देख लेगा सब कुछ। बच्चे हैं वो, एक प्रकार के मौत के मुंह में जा रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि वो उसका प्लान क्या है, ये सब लोगों को अंदर लेना के बंद करना है और खा जाना है पूरा। ऐसा सारा तर्क होने के बाद भी निर्भय होकर चले गए वो उनके मुंह के अंदर। शास्त्र में वर्णन आता है कि कृष्ण जो थे पीछे थे वो देख रहे थे, अरे कैसे इतने सारे ग्वाल बाल बिना सोचे बिना डर के अंदर घुस रहे हैं, और स्वयं उनको आश्चर्य हो रहा है, क्या शक्ति है उनके अंदर। अरे जो व्यक्ति कृष्ण का सहारा लेता है वो निर्भय हो जाता है। हम सब लोग भयभीत हैं, अब बूढ़े हो जाएंगे, कभी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी, कोई चुरा लेगा, कोई डाकू आएगा, कोई लड़का जो है साइन मार के ले जाएगा, हाँ कितना प्रकार का भय हमको, हमारी इज्जत कभी समाप्त हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। और सबसे बड़ा भय हमारे पास क्या है, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, हाँ बाल सफ़ेद हो रहे हैं, शरीर बीमार हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, मृत्यु होगी, कोई विचार नहीं करना चाहता उसका, अभय उस वस्तु का, क्योंकि बोलते हैं अशुभ है बहुत। लेकिन सबके मन में भय है। मुर्गी का पिल्ला जब बाहर आता है ना, मुर्गी के शरीर से अंडे से बाहर आता है, और छोटा सा पिल्ला है, आकाश से वो आती है, घर आती है तो भाग जाता है वो। उसको किसने बताया कि ये मृत्यु क्या होती है, बताओ, समझाया किसने, ट्रेनिंग दिया क्या उसको कि घर आएगी और तुमको मार डालेगी, तब तुम्हारी मृत्यु होगी, किसी को पता है क्या। लेकिन फिर भी हर जीव के अंदर ये भय बसा हुआ है। शेर भी होता है इतना भयंकर, लेकिन उसको भी डर है। आहार, निद्रा, मैथुन और भय, ये चार चीजें हर व्यक्ति को लागू है। कितना भी पावरफुल व्यक्ति होगा फिर भी उसको भय होगा, प्रधानमंत्री भी होगा तो उसको कभी कुर्सी निकल जाने का डर मन में रहता है, अगले इलेक्शन में हार जाऊंगा तो कैसे होगा। तो कहने का तात्पर्य में क्या है मेरा, भय नाम की वस्तु हर जीव के अंदर बसी हुई है। शरीर के स्तर पर भय, मन के स्तर पर भय, सामाजिक स्तर पर भय, पद के स्तर पर, इज्जत के स्तर पर, अहम के रूप में भी भय होता है। बड़े आदमी को अपमान का भय होता है ना, कोई मेरा अपमान ना कर ले, डर लगता है उसको कि अपमान से बचने का कोशिश करता है, अपने समाज में जो स्थान है उसको बनाए रखने का कोशिश करता है वो, क्योंकि भय है कि वो स्थान नष्ट हो जाएगा, मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, यश नष्ट हो जाएगा, तो कोई सम्मान नहीं करेगा मेरा। ऐसे भय की अवस्था में भी जो ग्वाल बाल है, जो कृष्ण को शरण गए हुए हैं, वो बिना भय के मौत के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि इतना निर्भय होकर मुझ में श्रद्धा रख के अगर प्रवेश कर रहे हैं तो इनको बचाना मेरा फर्ज है, तो खुद भी चले गए उनके अंदर, और अंदर जाकर विस्तारित हो गए, बड़े हो गए, बहुत उष्ण हो गए, गर्म हो गए, और उसका सर फाड़ कर बाहर आ गए और अगासुर की मृत्यु हो गई। फिर अंदर मरे हुए सारे बालकों को भगवान ने जीवित भी कर लिया। एक तरफ कंस है और एक तरफ ग्वाल बाल है। ग्वाल बाल एक तरफ है भगवान को शरण लेकर निर्भय हो चुके हैं, और इस तरफ कंस है जो भगवान मारेंगे मुझे इसलिए भयभीत है, और एक तरफ भक्त वसुदेव हैं, इतने दिन भयभीत थे, भगवान का दर्शन किया तो भय मुक्त हो गए, और एक तरफ वो ऋषि मुनि है, भयभीत थे, भगवान का अवतार हो गया तो भय मुक्त हो गए। हमको भय मुक्त होना है, आप में से कितने को लगता है कि हमको भय है, बताओ हाथ ऊपर कर लीजिए जिसको लगता है कि मुझे भय है। अरे हम सबको भय है, हाथ ऊपर करो या मत करो, हमको मालूम है, शास्त्र में लिखा है, हमने अनुभव भी किया है, हमको भी भय है अनेक वस्तुओं का। लेकिन अगर आपको भय मुक्त होना है तो ये आज का दिन का आपका एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, याद दिलाने के लिए कि आज के उत्सव में भगवान को अपने आप को अर्पण करके आप भय मुक्त हो सकते हो। हरे कृष्णा। और समझो अभी जन्माष्टमी नहीं है, समझो चली गई, तो कैसे भय मुक्त होना है। भगवान से किसी भी प्रकार से आप संपर्क करेंगे, ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेशयत, किसी भी प्रकार से अपना मन अगर कृष्ण में आपका निवसित हो रहा है, आपने रखा है उनके चरणों में, तो आप हर रोज हर क्षण भय मुक्त रह सकते हो। अरे हमारे प्रभुपाद जी का नाम क्या है पता है आपको, अभय चरणारविंद। मतलब क्या होता है, जिन्होंने भगवान के कमल जैसे चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, उस व्यक्ति को अभय चरणारविंद कहा गया है। और हम सबको अभय चरणारविंद बनना है, जिन्होंने अपने जीवन को पूरे विश्वास के साथ भगवान के चरणों में झोंक दिया है, समर्पित कर दिया उन्होंने पूरे। कृष्ण की लीला में आप पढ़ेंगे ना, भागवत पढ़ेंगे, गर्ग संहिता पढ़ेंगे और शास्त्र पढ़ेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि जितने भी भगवान के भक्त थे वो सब भगवान के सहारे से भय मुक्त हो गए थे। हमें अभी भी याद है, हम जब पहले मीरा रोड में आए थे, सबसे पहले हमारा कुछ दवाखाना कुछ था नहीं उस समय, तो हमने एक फ्लैट लिया था, वहां पर ओपीडी शुरू किया था। हाँ, दूसरा फ्लैट उसी मालिक का, उसी के बाजू वाला लेने के लिए जब हम गए थे, तो हमारा साइन मैन सब हो गया और हम थैंक यू करके बाहर निकले। हाँ, तो उसके घर में कुत्ते का पिल्ला था छोटा सा, वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आया और हम भी उसके भी सब लोग साथ में बाहर आए, वो बाय बाय कर रहे थे। उतने में हम जब बिल्डिंग के उस फ्लैट के बिल्डिंग के गेट पर आए, तो गेट पर मेन रोड था और मेन रोड पे तीन बड़े बड़े ऐसे जोरदार कुत्ते आए और जोर जोर से वो छोटे पिल्ले पर भौंकने लगे। आप समझ रहे सीन कैसा है, बड़े बड़े कुत्ते आकर वो छोटे पिल्ले पर भौंक रहे हैं। छोटे पिल्ले ने क्या किया, जो मालिक था ना घर का, जो उसका मालिक था, उसके दो पैरों के बीच में आया और ऐसा जोर से भौंकने लगा तीन तीन कुत्तों के ऊपर। इतना सा पिल्ला मालिक के दो पैरों के बीच में खड़ा होकर चिल्ला रहा है और उनका भौंकना देकर फिर वो तीन कुत्तों को जाना पड़ा। हमारे लिए क्या शिक्षा है इसके अंदर बताओ। वो कमजोर था निश्चित रूप से, उसमें से एक बड़ा कुत्ता भी उसके लिए भारी था, उससे तीन तीन कुत्ते थे, फिर भी उसने जो बलवान व्यक्ति मनुष्य उसका मालिक है उसके चरणों का सहारा लिया और वहां खड़े होकर जोर से उसने भौंका तो सारे कुत्ते भाग गए। हमको भी पता होना चाहिए, हम लोग कमजोर हैं, अणु मात्र हैं, हम लोग सच्चिदानंद अणु मात्र हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन हम सबसे बलवान व्यक्ति का सहारा लेते हैं तब निर्भय हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं वो निर्भय होते हैं, वो डरते नहीं किसी को। अरे हमारे प्रभुपाद जी को, वो जब इंग्लैंड में गए थे यहाँ से प्रचार करने के लिए, तो इंग्लैंड की एक पत्रकार थी, लड़की थी, वो उनको इंटरव्यू देने को लाई थी। वो पता है ना इंटरव्यू कैसे लेते हैं, एकदम पूरा ऐसा नोक झोंक करके पूरा उल्टा सीधा प्रश्न पूछते हैं, आपको तकलीफ देने का प्रयास करते हैं। बोलते महाराज जी आप लोग यहाँ कैसे आए, आपके देश के लोग यहाँ पर पैसा कमाने को आते हैं, आप भी पैसा कमाने को आए कि हमारा धन लेके जाने के लिए आए। तो उन्होंने क्या बोला, अरे आप लोगों ने हमारे राज देश पर 150 साल राज किया, सब चुराया आपने हमारा, कोई ने हीरा चुराया, तलवार चुराई भवानी शिवाजी महाराज की, टीपू सुल्तान की तलवार चुराई, जितनी जितनी कीमती वस्तु सब चुरा के लेके गए आप लोग, लेकिन एक चीज चुराना भूल गए आप, वो है हमारा कल्चर और हमारी भगवत गीता, वो तुमको मैं हैंड डिलीवरी देने को आया हूं, कुछ लेने को नहीं आया हूं यहां पर, तुमको देने आया हूं मैं। और बाय द वे बोलते हैं महाराज जी हमारे, इसको देखो पीछे एक व्यक्ति उनको हवा दे रहा था पंखा से, बोला इसको देखो ये ब्रिटिश है तुम्हारे देश का और मुझे हवा दे रहा है और मैं इसको तनख्वाह नहीं देता ये मेरी फ्री में हवा सेवा कर रहा है, क्योंकि इसको मालूम पड़ गया है कि भगवान का अपने जीवन में सबसे बड़ा धन क्या होता है और मैं उसको दे रहा हूं, इसलिए वो मेरी फ्री में सेवा कर रहा है। तुम्हारे देश में मैं तुम जो भूल चुके हो लेने के लिए मूर्खता की वजह से, उसको देने के लिए मैं आया। ऐसे एक दिन इंग्लैंड में वो घूम रहे थे जंगल में ऐसे मॉर्निंग वॉक में, तो उनका एक सेवक था, वो उनको एक एक पेड़ का वो दातुन करने के लिए टुकड़ा निकाल के देता था उनको। तो वो सुरक्षा अधिकारी आया वहाँ पुलिस वहाँ पर, वो बोला क्यों बार बार हमारे वन की शोभा क्यों मिटा रहे हो तुम, ये तुम्हारा लड़का पीछे पीछे आके। तो कह रहा है कि वो मेरे जो गुरु जो है ना उनकी सेवा में, तो उनको लगा गुरुजी से बात करनी पड़ेगी अभी ये सब उसको बंद करने के लिए। तो प्रभुपाद जी के पास में आए, बोले आपका शिष्य जो है वो ये हमारे अच्छे बगीचे जो बनाए रखा है मेंटेन करके रखा है उसके लकड़ी के टुकड़े जो है वो तुमको तोड़ के दे रहा है, हमारी शोभा नष्ट कर रहा है। तो बहुत देर तक कंप्लेंट किया उसने, प्रभुपाद सुनते रहे। बहुत देर के बाद में बोले हो गया कंप्लेंट पूरा हो गया आपका, हाँ अभी हो गया, अभी मैं आपको बताता हूँ। अरे तुम लोगों ने हमारे राज्य में देश में आकर 150 साल तक दिन भर दिन दहाड़े चोरी करके सब कुछ बंकिंगहैम पैलेस में जमा कर दिया हमारे देश में आकर, और तुम्हारे पेड़ का एक टुकड़ा निकाला तुमको कितनी तकलीफ हो रही है, हमको कितनी तकलीफ हो गई होगी, तुमने इतना चोरी किया तभी तो चुपचाप हो गया एकदम। तो मैं क्या बताना बता रहा हूँ यहाँ पर, प्रभुपाद जी को भय नहीं था किस चीज़ का, जिन्होंने कृष्ण के चरणों का सहारा लिया है, वो डरते नहीं किसी से। जो व्यक्ति मृत्यु मृत्यु के डर मृत्यु से भी डरता नहीं है, वो क्या पुलिस अफसर को डरेगा? सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का होता है। ये हमारे एक बाबा थे, हमारे गुरुजी और बाबा, वो उधर रहते थे बरसाने में मथुरा के जिले में। तो उनको मारने के लिए डकैत आ गए ऐसे बंदूक लेकर, अरे महाराज यहाँ पर कीर्तन करना बंद करो, यहाँ पर कीर्तन ने हमारा सब सामान रखने का अड्डा है, ये हम लोग चोरी करके यहाँ पर माल रखते हैं, आप लोग यहाँ से हटो, निकल जाओ यहाँ से, गोली मार देंगे आपको। तो बोलते मारो गोली, देखो मार देंगे गोली, बोलो मारो, अरे मरने के लिए तो आए यहाँ पर हम, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, भगवान की गली में मरने के लिए आए हैं, और आपको मौत का डर दिखा रहे हो, जो चाहते हैं उसी को आप करोगे ऐसे बता रहे हो, करो मारो। चले गए वो बंदूक लेकर। अरे जो व्यक्ति डरता नहीं मौत से, उसको आप क्या डराएंगे और बताओ? जो भगवान के शरण में है उसको कोई नहीं डरा सकता। सो भगवान का जन्म जो है वो केवल वो पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है, दही हंडी कितना ऊंचा होना चाहिए, स्टूल पर चढ़ना है कि सीढ़ी पे चढ़ना है कि बिल्डिंग से ऊपर चढ़वाना है, उसको क्या करना है, उसको पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। भगवान का जन्मदिन का उत्सव जो है वो भयमुक्त होने के लिए है, निर्भय होने के लिए है, उनका सहारा लेने के लिए है, उनके चरण में अपने आप को अर्पण करने के लिए है, अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करने के लिए ये जन्मदिन का उत्सव है, राजकारण करने के लिए नहीं है। हम सब लोग भूल जाते हैं कि भगवान अवतार क्यों ले रहे हैं हमारे लिए, क्या पर्पज है उसके पीछे। प्रभुपाद जी ने हमको ये समझाया है, इसलिए हम लोग जन्माष्टमी के दिन उपवास करते हैं, उनके लिए उनकी याद में उनका नाम जपते हैं, दिन भर उनकी सेवा करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दिन हमारे लिए एक और मौका है अपने आप को शरण जाने के लिए उनके चरणों में। रामनवमी और एक मौका है प्रभु राम के चरण में शरण लेने के लिए। हाँ फिर राधाअष्टमी आएगी, भगवान की सखी परम सखी परम देवी, उनका जन्मदिन 9 सितंबर को आएगा, वो और एक मौका है भगवान की शक्ति के चरण में शरण जाने के लिए। फिर दशहरा आएगा, प्रभु रामचंद्र का विजय जो रावण के प्राप्त हुआ है, तो वापस एक बार मौका मिलेगा आपको उनके चरण में शरण जाने का। अरे अनंत भक्तों ने उनके चरण में शरण जाकर अभय प्राप्त कर लिया, मौत से मुक्त हो गए वो सब लोग, मौत के भय से, मौत उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, मुक्ति और भुक्ति उनके सामने हाथ जोड़कर चलती है जो भगवान का सहारा लेते हैं। सोचो आप इस बात को, जिसके पीछे दुनिया तड़प रही है भोग लेने के लिए, उसको कहते हैं भुक्ति। साधु लोग मुक्ति प्राप्त करने लिए तपस्या कर रहे हैं, मतलब मुक्ति के लिए भी लोग तमन्ना कर रहे हैं, और बहुत लोग सिद्धि चमत्कार करना चाहते हैं उसके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन ये सारे भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो है हाथ जोड़कर भगवान के भक्त के पीछे दौड़ती है, और भगवान के भक्त उसको पीछे मुड़कर देखते भी नहीं है। ना उनको भुक्ति चाहिए, ना उनको मुक्ति चाहिए, ना उनको सिद्धि चाहिए। जिन्होंने भगवान के चरण में शरण लिया है उनको दुनिया की कोई चीज आकर्षित नहीं करती, क्योंकि दुनिया की चीज आप प्राप्त करते हो ना तो उसको खोने का भय भी रहता है। समझो आपको अभी 10 करोड़ रुपया प्राप्त हो गया, समझो आज लॉटरी लग गई आपको, शाम तक टैक्स काट के पैसा पहुंच गया 65%, फिर आपको डर लगेगा कहां रखूं। बहुत सारा सोना मिल गया आपको 50 किलो, तो आपको डर लगेगा अभी कहां रखूं। यहां का धन जो है ना वो आते ही भय को लेकर ही आता है। वो आपकी पत्नी बहुत सुंदर हो तो आपको डर रहता है कोई आतंक न करे उसके ऊपर, आप बड़े धनवान हो तो आपको डर रहता है कि आपका धन को चुरा न ले। लेकिन भगवान का भक्त जो है उसका सारा चीज भगवान के चरणों में समर्पित है, वो डरता नहीं है, कुछ खोया कुछ पाया क्या फर्क पड़ता है, जो नसीब में है वो देंगे हमको, विश्वास रहता है उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौत से डरना खत्म कर देते हो, बंद कर देते हैं। आपको सबको अच्छा लगेगा ना अगर आप मौत के भय से मुक्त हो गए तो? यस मुझे तो अच्छा लगेगा, और मुझे पता है कि अगर मैंने इस जन्म में भगवान के चरणों का सहारा लिया तो मैं निश्चित रूप से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। यमराज भी ऐलान करते भागवत में कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, चिंतन करता है, कीर्तन करता है, पुकारता है, उनको भगवान के लिए अपने आप को अर्पण करता है, वहां पर आप मत जाना। यमदूत को आदेश देकर रखा है उन्होंने, आपका कोई काम नहीं वहां जाने का, जहां पर भगवान के भक्तों के द्वारा कीर्तन हो रहा है, भगवान का भक्त अपने जिंदगी को खत्म कर रहा है, वहां पर आपको जाना नहीं है। वहां विष्णु के दूत आएंगे उसको ले जाने के लिए, कोई काम नहीं आपका वहां जाने का। ऑर्डर है उनको, स्टैंडिंग ऑर्डर सर, डोंट वरी। इसलिए आपको यमदूत का दर्शन नहीं करना है, भगवान के चरणों का सहारा लो। ऐसे उत्सव में आकर अपने आप को भगवान के चरणों में मन से अर्पण करो कि ये भगवान मैं आपका हूं, मुझे अपना बना लो। यही मौका है। इसलिए आपको ये भाग्य है कि हम भक्ति वेदांत में काम करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में हमको ये जानकारी दी जा रही है कि डर से मुक्त होना है, भगवान का सहारा लो। सहारा कैसे लेना है? भगवान का नाम पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब जो जवान है, जो वृद्ध अवस्था में है, जो स्त्री है पुरुष है, जो अच्छे हैं बुरे हैं, जो गरीब है धनवान है, आरोग्य संपन्न है बीमार है पेशेंट है, सबको हम आह्वान करते हैं, बिना डर के भगवान का नाम पुकारो और भगवान के चरणों के शरण ग्रहण करो। भगवान आप पर इतनी कृपा करेंगे इसी जीवन में। अगर बहुत लेट हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है, बेटर लेट देन नेवर। अभी समय है मनुष्य जीवन का, अभी पुकारो भगवान को, अभी पुकारो, अभी शरण ग्रहण कर लो और पुकारो उनको, बोलो मुझे अपना बना लो, मैं आपका बनना चाहता हूं। अब तक माया दास था सदा उदास, माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास, अब मुझे बिंदास बनना है। अब तक मैं उदास था, अब मुझे आपका दास बन के बिंदास होना है। यही मेरी जिंदगी है और यही जिंदगी का अर्थ है और यही जन्माष्टमी का अर्थ भी है। कल तक माया दास थे, आज कृष्णदास बनो और आज से अभी से इसी क्षण से बिंदास बनो और अंत तक बिंदास रहो। यमदूत दूर रहेंगे, विष्णुदूत पास में रहेंगे और विष्णु को लोक का विमान आपके लिए तैयार रहेगा, निश्चित रूप से हमें विश्वास है इस बात का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और आपने बड़े प्रेम से हमारा प्रवचन श्रवण किया। मैं आपके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ इस शुभ अवसर पर कि आप सब लोग अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए समर्थ हो जाएं, यशस्वी हो जाएं और आपका अभी के से आगे वाला जीवन बिंदास हो जाए और आप भगवत धाम में भगवान के साथ में निवास करने के लिए पहुंच जाएं। हरे कृष्णा।